ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे पापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वयपायन विरहकातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हे मुरारे हे नाथ रायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण देव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण देव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण एव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द नारायण वासुदेव बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। आप लोग माता जी के मुखारविंद से सुंदर प्रवचन सुन रहे थे। अचानक सेवा आ गई तो मैंने सोचा क्या आप लोगों के सामने बोलूं, और फिर अचानक और भी सेवा 16 से लेकर 21 तक मिली हुई है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ एक अभी से प्रारंभ करो। ऐसा मैं कभी भागवत कथा तो करता नहीं हूं, लेकिन सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की विशेषता गाते ही हैं, तो मैं भी थोड़ा उनके ऊपर बोलने का प्रयास करूं। अपना श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है, तृतीय स्कंद से लेकर भागवत के 10 लक्षण कहे गए हुए हैं, और आप लोग भागवत हमेशा सुनते रहते हैं। यहां तो भागवत में ही है, यहां से लेकर वहां तक भागवत ही भागवत चलते हैं। तो कितने 10 लक्षण कहे हुए हैं। श्री सुकुवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम ऊषण मूतयः मनवांतरीशानुकता निरोधः मुक्तिराश्रयः। भागवत तृतीय स्कंद से लेकर आगे 12वें स्कंद 10 लक्षण से 10 स्कंद माने जाते हैं। तो तृतीय स्कंद में सर्ग का व्याख्यान करते हैं, और तृतीय स्कंध में स्वर्ग क्या है, तो भगवान की एक सामान्य सृष्टि स्वर्ग माने उत्पत्ति। सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य सृष्टि और एक विशेष सृष्टि होती है। जैसे पहला धागे से या सूत से एक धागा सामान्य बनाया जाता है और उस धागे से फिर बाद में विशेष विशेष वस्त्र बनाए जाते हैं। मतलब पहला कच्चा मटेरियल हो और उस कच्चे मटेरियल से आप लोग विशेष विशेष अलग अलग बनाते हैं। तो इस प्रकार तीसरे स्कंद में भगवान की सामान्य सृष्टि का सुंदर वर्णन किया और तृतीय स्कंद में ही सामान्य सृष्टि के साथ साथ ही मनु महाराज की जो तीन कन्याएं हैं, दो पुत्र हैं, तो उनमें देहूति मैया का चरित्र आया तृतीय स्कंद में। देहूति मैया का मंगलमय विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और दोनों के माध्यम से नौ कन्याएं हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा था, भगवान पहले ही शर्त रखी थी मनु महाराज के सामने, यदि आपकी पुत्री को ये मंजूर हो, मुझे एक संतान हो जाए कोई, तो उसके बाद में मैं मेरा संन्यास मार्ग स्वीकार करूंगा। और शत्रुपा और मनु महाराज के सामने देहूति ने मौन स्वीकार किया और उसके अनुसार ये विवाह हुआ, नौ कन्याएं हुई। जब जाने लगे तब देहूति मैया ने कहा, ये जो कन्याएं हैं इनकी व्यवस्था भी तो कोई करने वाला चाहिए, मैं अकेली कैसे करूं। और रह गई बात, ये कन्या अपने घर जाती हैं तो अपने घर में भी कोई होना चाहिए। और नारद जी ने बताया था देहूति मैया को भी और अपना भगवान ने स्वयं बताया था कर्दम ऋषि को कि आपके घर में मैं आने वाला हूं। तो भगवान आते हैं, कपिल भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए आशीर्वाद लेकर जंगल चले जाते हैं। और फिर बाद में माता ने सुंदर प्रश्न पूछा कपिल भगवान को कि हे भगवान, इस अनात्म संसार में न जाने कितनी योनियां मैं भटक रही हूं और एक तो मैं स्त्री जाति की हूं, मुझे समझ में भी नहीं आता है, आप मुझे सुंदर उपदेश दीजिएगा जिससे कि मैं मुक्त हूं। और इसका नाम है कपिल गीता, आप लोग हमेशा श्रवण करते हैं, बहुत सुंदर कपिल गीता है, कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसा आना जाना होता है। और कपिल भगवान ने वहां सांख्य शास्त्र का भी प्रतिपादन किया। कपिल भगवान का सांख्य शास्त्र थोड़ा सा भिन्न होता है और आज हम लोगों के सामने जो सांख्य कारिकादि है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब ये हो गया तृतीय स्कंद में देहूति मैया का थोड़ा सा वर्णन करके। चतुर्थ स्कंद में विषय है, मैं चतुर्थ स्कंद में जाना चाहता हूं सती मैया के चरित्र की तरफ, लेकिन वहां जाने के मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तावना पेश किया। चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय महाराज जी पूछते हैं, अपना बताते रहते हैं, विदुर जी महाराज सुन रहे हैं और मैत्रेय जी उत्तर दे रहे, दोनों का संवाद है। मैत्रेय उवाच, मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्यास जग्गिरे आकुतिर्देहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्री जी महाराज विदुर जी को कहते हैं, हे विदुर जी, मनु महाराज के माध्यम से पूरी की पूरी सृष्टि हुई है और मनु महाराज के साथ साथ जो शत्रुपा ये उनकी अर्धांगिनी हैं, इन दोनों के माध्यम से तीसरा कन्या जग्गिरे, तीन कन्याओं की उत्पत्ति हुई। और मैत्री जी महाराज नाम भी गिनाते हैं, आकुति, देवहूतिश्च प्रसूतिश्च विश्रुताः। विश्रुता माने प्रसिद्ध ये हैं तीन कन्या के। और देवहूति का पूर्व चरित्र आया है तीसरे स्कंद में। और यहां थोड़ा सा आकुति के बारे में बताते हैं। आकुतिम रुचये प्रादात भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। जो आकुति मैया है प्रजापति ऋषि के साथ उनका विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह होते समय एक शर्त रख देती है मनु महाराज, शतरूपा के क्या बोलते हैं अनुमोदन, मैंने शतरूपा सहमत है उसके लिए। किसके लिए? पुत्रिका धर्म आश्रित्य। पुत्रिका धर्म उसको बोलते हैं जिसको जिस पुत्री को दूसरे के साथ शादी करते हैं, उस पुत्री का यदि पहला बेटा होता है तो अपने गोद ले लेने का, उसका नाम है पुत्रिका धर्म। और ये इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का है, अपने बेटी का पुत्री उन्होंने गोद में लिया। तो इसी प्रकार यहां पर भी मनु महाराज के लिए दो पुत्र है, प्रिव्रत और उत्तानपाद। दो पुत्र होते हुए बेटी का पुत्र गोद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु तभी भी उनकी इच्छा हो गई और अपनी पत्नी स्वीकृति दे देती है और उसके अनुसार रुचि प्रजापति से विवाह हो जाता है। और रुचि प्रजापति और आकुति के माध्यम से सुंदर संतति होती है दक्षिणा मैया और यज्ञ भगवान विष्णु की हो जाती है। और भी यज्ञ भगवान विष्णु को पुत्रिका धर्म के नियम से तुरंत अपने यहां ले लेते हैं और आकुति प्रजापति के पास माता पिता के पास दक्षिणा रहती हैं और बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। यहां थोड़ा कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, प्रजापति स भगवान रुचिस तस्याम अजिजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना ययोस्त्रयो पुरुष साक्षात विष्णुर यज्ञ स्वरूप धृक या स्त्री सा दक्षिणा भूते हे अंश भूतान अनपायिनी। भूति मनी लक्ष्मी, लक्ष्मी ही दक्षिणा के रूप में आई हुई है और यज्ञ भगवान विष्णु उनके उदर में आए हुए। अभी दोनों में से पुत्री जो है माता पिता के पास रहती हैं और पुत्र को नाना के पास लाते हैं, नाना नानी के पास लाते हैं और बाद में इनकी शादी हो जाती है। कभी ऐसा प्रश्न हो जाता है कि भाई और बहनें इनकी शादी कैसे होती है, इसके बारे में हम आप लोग मेरे से बहुत, मैं भागवत कथा नहीं करता हूं, अभी प्रारंभ है, अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा। तो हो सकता है ये सब दैवी पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनके लिए कोई अपना दोष भी नहीं है और जन्मते ही अलग किया गया है और ये दोनों के दोनों शक्ति और शक्तिमान हैं, इसलिए उनके पास हम लोगों के सामान्य नियमों का वाव होता नहीं, मतलब हमारे सामान्य नियम वहां चलते नहीं है। तो इस प्रकार आकुति की भी संतति हो जाती है, 12 पुत्र हो जाते हैं, उनका विस्तार हो जाता है और देवहूति मैया की 9 कन्याएं और 9 ऋषियों को दी जाती है, उनका भी बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। और बाद में आ जाते हैं अपना प्रसूति मैया की, आकुति का तो आप लोगों ने सुना, देवहूति मैया का सुना, प्रसूति के लिए प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपयेमे हे आत्मज तस्याम ससर्ज दोहित्री षोड़श अमल लोचना। मैत्री जी महाराज विदुर जी को कहते हैं, ए विदुर, अब आकुति का और देवहूति का जो वंश का लंबा चरित्र आपने सुना, वंश परंपरा मैंने आपको सुनाई, अब सुनाता हूं प्रसूति जो तीसरी कन्या है मानवीम, उसका नाम दिया मानवी प्रसूति। मानवी का अर्थ है मनु महाराज से उत्पन्न होने वाली मानवी, दक्ष से होने वाली दक्षायणी, प्रिता से होने वाला पुत्र को बोलते पार्थ। इस प्रकार प्रसूति मैया मनु महाराज से हुई है इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, मानवी। और ये दक्ष महाराज दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ जो तीसरी कन्या है और तस्याम ससर्ज दोहित्री उस प्रसूति मैया से दोहित्री मानी कन्याएं उत्पन्न हो गई कितनी षोडश मानी 16 और वे भी कैसे अमल लोचन सुंदर आंख वाली नेत्र वाली 16 कन्याएं हो गई और 16 त्रयोदश अदा धर्माय तथा एकम अग्नये विभु पितृभ्य एकाम युक्तिभ्यो भवा एकाम भव छिदः त्रयोदश 13 एकटाई धर्म के लिए दी गई है और एक अग्नि के लिए दी गई है एक पितरों के लिए दी गई है 15 हो गई और एक बच गई भवाय एकाम भवत छिदे भवत छिदे भवाय एकाम ददात भवा मनी भव किसको बोलते हैं संसार का नाम है भव भवत छिदे मनी संसार का नाश करने वाले ऐसे कौन है शिवजी है भवो भवत भव्याय लीला तांडव पंडित मुक्तावली में मंगलाचरण किया है शिवजी के लिए कृष्ण के लिए अलग किए हैं शिवजी के लिए भी किया है तो शिवजी के लिए मंगलाचरण करते हुए बोलते हैं भवा भवत भव्याय लीला तांडव पंडित लीला करने में तांडव नृत्य करने में कैसे हैं पंडित है बहुत ही चतुर कुशल है ऐसे शिवजी के लिए हम नमस्कार करते और वहां पर बोल दिया भव भव मने ऐसा संसार है किंतु वहां भव मने शिवजी भव भव तो भव्याय ये शिवजी हमारे भव्य के लिए हो हमारे विकास के लिए हो इसी प्रकार यहां पर भी मैत्री जी महाराज बोलते हैं भवच्छिदे माने भव का नाश करने वाले शब्द है भवच्छिद जैसे मरुत हलंत शब्द होता है और चतुर्थी का एक वचन होता है भवच्छिदे माने भवच्छिदे चतुर्थी का है माने भव का नाश करने वालों के लिए करने वालों के लिए कौन है ऐसे शिवजी है एक दिया गया और उसका नाम क्या है सती सती का चरित्र अब यहां 13 का नाम भी गिना देते हैं जो धर्म को दिए गए हैं श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेदा तितिक्षा ह्री मूर्ति धर्मस्य पत्नया ये 13 इकट्ठा गिनाया 13 ये नाम भी दे दिया और उसमें मूर्ति नाम की जो कन्या है प्रसूति की जो 13 कन्याओं में से जो धर्म को दी गई है मूर्ति और धर्म के माध्यम से मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायण ऋषि नव योगेश्वरों की कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है नव योगेश्वरों की कथा सुनने वाले कौन है हाजी हा निमी राजा सुन रहा है बहुत बढ़िया हाँ लेकिन ये निमे राजा और नवयोगेश्वरों का जो संवाद नारद जी सुना रहे हैं वसुदेव जी को हाँ वसुदेव जी नारद जी आते ही उनकी पूजा कर देते हैं और बोलते हैं क्योंकि अब एकादश स्कंद का नाम ही है मुक्ति स्कंद धीरे धीरे सबको मुक्त करना है पिता को ज्ञान देना कृष्ण भगवान देने पर वो लेगे भी नहीं बोलते हैं ना कान घर में भी छेद सकते हैं लेकिन कहां लेके जाते हैं सोनार के पास लेके जाते कहावत है ना घर में छेद सकते हैं लेकिन न छेदते हुए वहां लेके जाते हैं इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी को ज्ञान देते हैं और देने पर भी वसुदेव जी को पछता भी नहीं है तो यहां वसुदेव जी को ज्ञान देने के लिए सुंदर नारद जी ने अपना उपक्रम करते नौ योगेश्वरों की कथाओं का निमि महाराज सुन रहे हैं और नौ योगेश्वरों की कितनी बड़ी विशेषता है बड़े लोग आने पर उठने की जरूरत नहीं होते स्वयं उठा जाता है सामने व्यक्ति तेजस्वी हो तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उनका दर्शन करो
यहां यज्ञ हो रहे हैं, दूर से पधार रहे हैं, ये तो अपना स्वाहा स्वाहा लगे हुए हैं, 16 ऋत्विज और 2 यजमान, 18 की ये नौका है ना, कर्मकांड की क्या है, नौका है, कितने लोगों की, 18 लोगों की नौका है, 2 यजमान मानी पति पत्नी यजमान होते और 16 ऋत्विज होते, ये अपने कर्म में लगे हुए हैं और ज्वालाएं ऊपर उठ रही है। ऋत्विजों को लगा कि ज्वालाएं इतनी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ विशेषता बताती है, तो मुड़ के देखा तो नव योगेश्वर आ रहे थे, मानी उनका स्वागत किसने किया, अग्नि ने किया, निमित्त तो बाद में, उनको देखना पड़ा कि ज्वालाएं इतनी ऊपर उठ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण ढूंढने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़ा तो दिखाई दिए नव योगेश्वर, और तब ये इनका स्वागत करते हैं, और नव योगेश्वरों की कथा में से नर नारायण की कथा आप लोगों ने सुना है, तो यहां पर भी यही बोलते हैं कि मूर्ति जो प्रसूति की कन्या है 13 में से, उस मूर्ति के उदर में, मूर्ति और धर्म के उदर में नर नारायण ऋषि आए हुए हैं, और इनकी कथा बहुत ही सुंदर है, आज भी बद्री का आश्रम में क्या करते हैं, तप करते हैं, और ये नर नारायण का अवतार किसके लिए है, किसको मारने के लिए, एक कोई राक्षस थे ना, कितने जन्म लेने के तप करने के बाद मारना, मुझे भी सोचा आप लोगों ने सुना होगा, एक ये तप करते थे फिर मार देते थे फिर वो तप करते थे, सहस्त्र अर्जुन तो नहीं है लेकिन सहस्त्र अर्जुन नहीं, लेकिन ये कथा मुझे याद नहीं आ रहा, देखिएगा हमेशा भागवत न करने के कारण, लेकिन वहां नर नारायण का अवतार किसके लिए मूल बताया गया कि एक के बाद में एक जगते थे, एक मार देता था उस एक को और फिर इनको तपश्चर्या के माध्यम से उठाते, मैं देखता हूं आए, तो चलिए मतलब क्योंकि उद्देश्य था उनका आने का, और मेरे ख्याल से यही कर्ण पहला था, वो ऐसा भी आया हुआ है, मैं पहला जो कर्ण था, क्या उसका जन्म पता नहीं लेकिन वो था, उसके लिए ही आया था, तो यहां चलिए नव योगेश्वरों की कथा में नर नारायण के। अब आगे बढ़ते हैं, प्रसूति मैया की एक कन्या है, सभी का वंश वर्णन आया, प्रसूति की जो 16 कन्या है, अग्नि को दी उनकी भी संतति हो गई है, पितरों को दी गई है उनकी भी संतति हुई है, बची है मैया कौन, सती मैया बची है, भवस्य पत्नी तो सती, भवम देवम अनुवृता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेबे गुणशीलतः। मैं देवहूति की कन्याओं का विस्तार लंबा हुआ, आकुति के कन्याओं का भी विस्तार लंबा हुआ, प्रसूति का दूसरे कन्याओं का हुआ, लेकिन उन 16 कन्याओं में से एक कन्या बच गई जो सती माता है, सती के लिए बता रहे हैं, भवस्य पत्नी तो सती, भवम देवम अनुवर्ता, देव महादेव, महादेव को अनुवर्तन करने वाली, शिवजी की बहुत सेवा करने वाली सती मैया थी, किंतु आत्मना सदृशम गुणशीलता पुत्रम न लेवे, अपने गुणशील के अनुसार, दोनों के स्वभाव के अनुसार, दोनों कौन, शिवजी और सती माता के अनुसार पुत्र प्राप्ति हुई नहीं है, क्यों नहीं हुए हैं, तो बोलते हैं पितर यह प्रतिरूपे श्वे भवाय अनागसे रुषा अप्रौढ़ एव आत्मना आत्मानम अजात योग संयुता। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को बोलते हैं, हे विदुर जी, क्योंकि पितरी अप्रतिरूपे, पितरी सप्तमी रूप है, पितरी अप्रतिरूपे माने पिता अनुकूल नहीं होने के कारण, रामे वने गते दशरथ पंचत्वम गता, रामे वने गते दशरथ पंचत्वम गता, माने राम वन जाने पर दशरथ जी पंचत्व में लेने, माने सप्तमी का प्रयोग मैं बता रहा हूं, रामे वने गते, मतलब राम वन जाने पर, और सीधा सीधा सप्तमी का अर्थ है में और पर होता है क्या नहीं, ऑन और इन सप्तमी का अर्थ, लेकिन यहां बाद में होने पर आता है। इसलिए पितरी प्रतिरूपे माने अपने पिता के द्वेष के कारण, अनुकूल न होने के कारण अपने शिवजी का आराध्य का उन्होंने अपराध करने के कारण अप्रौढ़ा एव माने युवा अवस्था में, बहुत प्रौढ़ और अप्रौढ़ माने ज्यादा प्रौढ़ नहीं हुई थी, माने अभी अभी ये देवताओं का समय है, हम लोगों का समय नहीं है, तो उनका बहुत काल होता है, तो बोलते हैं अभी तरुणी थी, युवती थी, ऐसी अवस्था में ही अपने शरीर को पिता के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। ये मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को कहा। अब विदुर जी प्रश्न पूछेंगे द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में। विदुर उवाच, भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दोहित्री वत्सल विद्वेषम अकरोत् कस्माद अनादृत्य आत्मजाम सतीम। प्रश्न करते विदुर जी, भवे शीलवताम श्रेष्ठे, भवे मने शिवजी, शीलवताम श्रेष्ठे, जितने शीलवान हैं उन सब में शिवजी कैसे हैं, श्रेष्ठ है, और दक्ष भी कैसा है, दोहित्री वत्सल, दुहित्री वत्सल, दक्ष का विशेषण देते हैं, ये तो शिवजी का विशेषण दिया, शीलवताम श्रेष्ठ, माने दामाद का विशेषण है शीलवताम श्रेष्ठ, और ससुर का विशेषण है दुहित्री वत्सल, भक्त वत्सल, भगवान का नाम क्या है, वत्सल, वत्सल और वत्सला क्या शब्द है, पुरुष को बोला जाएगा वत्सल और स्त्री को बोला जाएगा वत्सला। जो नवजात शिशु रहता है, नवजात शिशु होने के बाद में उस मां का इधर उधर ध्यान नहीं जाता है, हमेशा चिंतन किसका चलता है, वो छोटे से बच्चे का चलता है, घर के काम से चिंता नहीं होती है, किसी की चिंता नहीं होती है, मन में एकमात्र लालसा रहती है उस छोटे से नन्हे से बालक की, इसलिए मां का अथवा पुरुष को बोलते हैं भक्त वत्सल, अतः क्या बोलते हैं पुत्र वत्सल, वत्सल नाम है केवल, वत्सल, वत्स छोटा सा बच्चा, और उसके प्रति जो विशेष भाव लाते हैं उसका नाम वत्सल। और भगवान के लिए वत्सल आप लोग कभी उदाहरण सुनते रहते हैं, अकबर ने बिरबल को पूछा, बोलते बिरबल तुम्हारे भगवान के पास इतना शक्ति नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से ही भक्तों अपना दुष्टों को उड़ा दे, हमारा तो जो खुदा सात आसमान पर बैठता है वहां से ही अपना क्या बोलते हैं आजकल टीवी रिमोट से चलाते हैं या आजकल बम भी उड़ाते अपना रिमोट कंट्रोल से, इस प्रकार आपके भगवान के पास इतनी शक्ति नहीं है क्या, छोटे बच्चों की तरह आता है अवतार लेता है और अपना उनको तारता है, बोलते ये तो अच्छी बात नहीं है, मानव रूप लेना मछली रूप लेना ये रूप लेकर तारता है, अरे देखो हमारा आता जाता कुछ नहीं और वहां से ही क्या कर देता है उड़ा देता है, तो इसका मतलब हमारे भगवान में हमारे खुदा में बहुत शक्ति है, आप भी कुछ नहीं है क्या। उन्होंने बोला ठीक है बताएंगे, बड़े लोगों को बोलने से काम नहीं चलता, आचरण में लाकर दिखाना पड़ता है, तो एक दिन योजना बनाई, बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में विहार करना था, नौका विहार बोलते हैं, अकबर बैठे हैं, अकबर के साथ साथ और मंत्री संतरी सभी बैठे हुए एक नाव में, एक नाव में रानी बैठी है, और अकबर का जो सबसे छोटा बेटा था उसका मोम का पुतला बनाया और उसकी दासी के पास दे दिया, रानी के पास बैठाया, रानी को कहां हो सा दासी क्या कर रही है, वो तो अपने मस्ती में केवल अपनी नौका अलग है बोल के बैठी हुई, वो दासी ने उसको ऊपर छोटे बच्चे को ऊपर नीचे करते हैं, इस प्रकार ऊपर नीचे करते करते पानी में डाल दिया। अकबर क्या करते हैं, तुरंत कूदते हैं तालाब में और निकाल देते हैं, वो तो मोम का पुतला है। बोलते किसकी ये शरारत है, बड़बड़ करने लगे अकबर। अकबर मतलब किसकी ये शरारत है, अकबर जो है चिल्लाने लगे। तो बीरबल बोलते यहां पर ये बताइएगा, हम लोग इतने बैठे हुए आपके साथ, हमें किसी को आदेश आपने क्यों नहीं दिया, आपको इस तालाब में कूदने की आवश्यकता क्या थी। तो उन्होंने कहा देखो बीरबल, तुम्हें मैं आदेश देता तुम दूसरे को आदेश देते, दूसरा तीसरे को आदेश देता, तब तक मेरा बच्चा डूब के मर जाता, इसलिए मैं कूदा। हाँ इसी प्रकार आ जाए ना, वो भगवान भी रिमोट कंट्रोल भी चलाते हुए उसमें चल रहता है क्या नहीं है, वो ये डाउन हो जाए रिमोट का, तो उससे अच्छा है स्वयं दौड़ के आते। मैं इसलिए बताया कि मतलब भक्त वत्सल माने भगवान इतने तुरंत आते हैं भक्त के प्रति उद्धार करने के लिए, और कितनी जल्दी आते हैं भक्त। एक भक्त बोलते हैं भगवान कितनी जल्दी आते हैं, हा कहे लक्ष्मी थी कहे गजराज, आगे लगत गोली पीछे होत आवाज। माने भगवान भक्त के पास इतनी जल्दी आते हैं कि उतनी जल्दी कोई नहीं आते, शब्दों की भी गति कमी होती है। कैसे, तो माता लक्ष्मी परोस रही है, गरुड़ भगवान बगल में बैठे हुए हो भी, और इधर अपने गजेंद्र ने पुकारा, पुकारते ही पहला सभी की राह देखा उन्होंने, कोई ना कोई अपने आएंगे और हमें इस संकट से बचाएंगे, लेकिन सभी मरने वाले हैं, एक दूसरे मरने वाले, तो मरने वाले मरने वालों को क्या बचाएंगे, इसलिए किसी ने बचाया नहीं है। और अंत में एक फूल लेकर, इस विश्व का कोई कर्ता हो तो मुझे बचाइए। वो विश्व के कर्ता धर्ता ने सुना और इतनी करुणा उत्पन्न हो गई कि लक्ष्मी पूछ रहे कहां जा रहा है भोजन छोड़ के, हा कहे लक्ष्मी थी कहे गजराज, हा थी मनी लक्ष्मी मैया के पास कौन सा शब्द रहा, हा, और थी कहां आया, हाथी। इतना जल्दी आ गया कैसे, तो उदाहरण देते हैं, आगे लगत गोली पीछे होत आवाज, पहले निशाने को गोली लगती है और बाद में आवाज आता है। इसी प्रकार भगवान इतने गए कि हाथी के पास जाने पर थी उनको पता चला कि हो कोई हाथी है, और उनके लिए भगवान गए भक्तवत्सल। इसी प्रकार यहां पर विदुर जी महाराज मैत्री जी को पूछते हैं, हे मैत्री जी, दक्ष प्रजापति दुहित्री वत्सल है और स्वयं भवे शीलवताम श्रेष्ठ, शिवजी सभी शीलों में श्रेष्ठ है, तो इन दोनों में विद्वेषम अकरोत् कस्माद् अनादृत्य आत्मजाम सतीम। बोलते हैं अपने पुत्री का भी सतीम आत्मजाम अनादृत्य, ऐसी जो अपनी पुत्री प्रेमी है, स्नेही है, अपनी कलेजे की टुकड़ी पुत्री है, इतना जो है दुहित्री वत्सल ने विद्वेषम कस्मात अकरोत्, तो उस शिवजी के साथ ये विरोध क्यों किया। और भी प्रश्न करते हैं, शिवजी कैसे हैं, कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांति विग्रम आत्मारामम कतम दृष्टि जगतो दैवतम महत। बोलते हैं शिवजी के लिए आया दैवतम महत, शिवजी सभी देवताओं में कैसे है, महान है, इसलिए शिवजी का एक नाम क्या है, महादेव। दैवतम महत माने सभी देवताओं में महान दैवत होने के कारण इनको बोलते हैं दैवतम महत। ऐसे महान देवता के साथ, और देवता कैसे है, चराचरम गुरुम, जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते हैं, इसी प्रकार शिवजी भी ज्ञान के आद्य गुरु है। एक भागवत की कथा कहां से आ गई है, माता को ही सुना रहे थे। एक परंपरा नारायण से आती है और एक परंपरा शिवजी से आती है, दो परंपरा है और दोनों परंपरा बाद में एक ही में मिली हुई है, लेकिन दो परंपरा आती है। इसलिए यहां बोलते हैं चराचरम गुरुम, पूरे इस सृष्टि के चर अचर प्राणियों के शिवजी गुरु है, निर्वैर है, शिवजी के प्रति किसी का भी वैर भाव नहीं है। शांत विग्रह ऐसे शांत मूर्ति आत्मा राम शिवजी का विशेषण देते हैं विदुर जी। कैसे राम है? आत्मा राम, आत्मनि आत्मना संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मनि आत्मना संतुष्ट, अपने आत्मा में जो रमण होते हैं उनके लिए बाहर के विषयों से कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसे शिवजी आत्मा राम है, ऐसे आत्मा राम और ये जगतो महादैवत, ऐसे भगवान शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति का वैर भाव क्यों हुआ? क्यों वैर की बताइए। ये तद अख्याये में ब्रह्मण जामा तो ससुरस्य विद्वेशस्तु यता प्राणन तत्त्यजे दुष्त्यजान सती ही। ये तद अख्याये ब्रह्मण, मैत्री जी महाराज को विदुर जी संबोधन देते हैं, हे ब्रह्मण, जो ऋषि लोग रहते हैं ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, इसलिए उनको क्या संबोधन दिया जाता है? हे ब्रह्मन, हे भगवन बोलते हैं ना। कभी कभी महात्मा लोग एक दूसरे को बोलते हैं आइए भगवान बोलते हैं, हे भगवान। तो इसी प्रकार यहां पर विदुर जी, हे ब्रह्मन मुझे ये बताइए, जामातु ससुरस्य च विद्वेषस्तु कथम। जामातु और ससुर, जामातु मनि दामाद, शिवजी दामाद बने हुए और दक्ष प्रजापति ससुर बने, दोनों में क्यों विद्वेष हुआ? यतः दुष्त्यजान प्राणान सती ही तो त्यजे, जो दुस्तर प्राण है सभी के लिए क्या प्रिय है? आत्मा ही तो प्रिय है और आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं और सबसे अत्यंत प्रिय है आत्मा। ऐसा जो दुष्त्यज आत्मा है ऐसे आत्मा को सती मैया ने क्यों त्यागा? ये विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्री जी पूरा का पूरा इतिहास बताते हैं। पूरा विश्व सृजाम सत मैत्री उवाचन, पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परम ऋषय तथा अमरगणा सर्वे सानुगा मुनयो अग्नया तत्र प्रविष्टम ऋषय दृष्टा अरकमीव रोचिसा भ्राजमानम वी तिमिरम कुरुवंतम तत् महत्सद। बोलते हैं पूर्व में एक बहुत बड़ी एक प्रजापतियों की सभा थी, उस सभा सत्र था, सभा था, उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग परम ऋषिया अमरगणा मने देवतागणा सभी के सब मुनि अग्नि सभी देवताएं पधारे हुए थे और तत्र प्रविष्टम अपना इन्होंने प्रवेश किया दक्ष प्रजापति ने। दृष्ट्वा अर्कम इव रोचिसा, जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश होता है इस प्रकार जैसे ही अंदर प्रवेश कर देते हैं दक्ष प्रजापति तो उनका प्रकाश सर्वत्र हो जाता है। ऐसे प्रकाश को देखकर सभी लोग उठना स्वाभाविक है। तो ये प्रकाश भ्राजमानम वितिमिरम कुर्वन्तम तत् महत्सदा, जैसे ये प्रकाश अंधकार को हटा देता है इसी प्रकार उस सभा में जो सामान्य रूपी अंधकार था उस अंधकार को दक्ष प्रजापति के प्रकाश से हटाया गया, मैंने हट गया इस प्रकार ही वर्णन। उदतिष्ठन, अभी इतना सुंदर उनका प्रकाश, मैंने एक तेज प्रकाश का आता है तेज, जो वीरों का असुरों का एक तेज होता है, आवाज होती है बोलने की। तो इस प्रकार उनका तेज देखकर उदतिष्ठन सदस्य हस्ते स्वधिष्णेभ्यः स अग्नयः ऋते विरंचिम सर्वं शर्वंच तस्मात् तद्भासाः अक्षिप्तचेतसाः। उदतिष्ठन सदस्यास्ते, ते सदस्य उदतिष्ठन, जितने भी सदस्य थे उठ के खड़े हो जाते हैं, कहां से? स्वधिष्णेभ्यः, आसन को बोलते धिष्णे, और स्वधिष्णेभ्य अपने आसन से सब कौन कौन स अग्नयः आदि सभी देवता होते हैं। किंतु रिते, रिते मने सिवाय छोड़कर, रिते दो को छोड़कर कौन कौन? विरंचिम शर्वंच, एक ब्रह्मा जी जो की त्यों बैठे हुए और शिवजी बैठे। ब्रह्मा जी इसलिए बैठे कि पुत्र आने पर पुत्र को उठने, अपना क्या बोलते, पुत्र आने पर पिता को उठने की जरूरत होती नहीं है, पिता को स्वागत करने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी का ये पुत्र है दक्ष, इसलिए दक्ष आने पर बाकी सब उठे हुए हैं लेकिन ब्रह्मा जी तो उठे नहीं है, स्वाभाविक है। और उठना भी नहीं चाहिए, उनके लिए कोई आपत्ति भी नहीं है दक्ष प्रजापति के लिए पिता होने के कारण। सर्वंच किसका नाम है? सर्व शिवजी का नाम है। सर्व सर्व शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम, तुलसीदास महाराज बोलते हैं ना, सर्व सर्व शिव शशि ना नहीं उठे। तद आभासा अक्षिप्त चेतसा, अर्थात उसके तेज को देखने पर भी इनके ऊपर उतना तेज का कोई प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ा नहीं है और दोनों बैठे हुए। अब सदस्यस्पतिर दक्षो भगवान साधु सत्कृता अजम लोक गुरुम नत्वा निसाद तद अज्ञया। सभी सदस्यस्पतिभिर मानी जितने सभापति थे सभा में आए हुए थे, अनेक क्या बोलते हैं प्रजापति बोलते रहते हैं, लोकपाल दिक्पाल मानी सभी दिशाओं के पति, इस प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सभी के सभी ने अपना बहुत सुंदर उनका स्वागत किया उठकर, इसलिए बोले भगवान साधु सत्कृत, भगवान दक्ष साधु सत्कृत किसके द्वारा? सदस्यस्पतिर सदस्य आप लोग बैठे तो सदस्य, और सदस्यस्पति का अर्थ है बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल जितनी भी आए हुए थे, इन सभी के द्वारा भगवान दक्ष साधु सत्कृत बहुत सुंदर सत्कृत हो जाते हैं। और अजम लोक गुरुम नत्वा निसाद तद अज्ञया। अब लोक गुरु है, अज है कौन? पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को नमस्कार किया दक्ष प्रजापति ने और तद अज्ञया निसाद अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर बैठ जाते और बैठने के बाद में प्रांग निषन्न मृणम दृष्ट्वा नामृषत तद अनादृत उवाच वामम चक्षुर्भ्याम अभिवीक्ष दहन युव प्रांग निषन्नम मृणम दृष्ट्वा। पहले से बैठे हुए मृण मृडेति व बैठे हैं शिव जी, दृष्ट्वा न अमृषत बिल्कुल सहन नहीं हुआ, लगा कि हो तद अनादृत इतना बड़ा इन्होंने मेरा अनादर किया। वामम चक्षुर्भ्याम वीक्ष दहन उवाच टेढ़ी नजर से देखता हुआ, मानो कि अब शिवजी को दहन यु तुरंत जला के भस्म कर देगा, इस प्रकार की एक भावना से टेढ़ी नजर से देखकर उवाच बोलने लगे दक्ष प्रजापति बोलने लगते हैं। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो मे सह देवास अग्नयः साधूनां ब्रोतो व्रतम् न अज्ञानात् न च मस्तरात्। हे ब्रह्मर्षयः श्रूयताम, जितने भी आप लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं आप लोग साफ सुनिए, मैं सह देवा स अग्नया, मैं श्रूयता मैंने मेरा बात मेरी बात सुनिए, कौन कौन? स देवा स अग्नया जितने देवता बैठे हैं अग्निया उनचास अग्निया सभी बैठे हैं बड़े बड़े, और बोलते हैं साधु नाम ब्रोतो व्रतम, अर्थात मैं शिष्टाचार की बात बता दो, व्रत मैंने बात ब्रोता मैं बता दो, न अज्ञानात न च मत्सरात, बोले मैं एक सदाचार की बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, मेरे में कोई द्वेष नहीं है ना मैं अज्ञानी हूं, न अज्ञानात न च मत्सरात। कभी कभी दूसरे का तिरस्कार करते हैं तो अज्ञान के कारण भी करते हैं मैंने ना समझी सी, और कभी कभी किससे करते हैं? द्वेष मैंने मत्सर कहिए द्वेष कहिए, मतलब मैं शिवजी के प्रति ना मत्सर रखता हूं द्वेष नहीं रखता हूं ना मैं इतना अज्ञानी हूं। अयम तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सदवीराचरित पंत एन स्तब्धेन दूषिता। अयम तो लोकपालानां यशोघ्न यशोघ्न यशम हन्ति इति यशोघ्न घनंती मनी हनन करना मारना। देखो ये शिवजी कैसे लोकपालाना मानी सभी लोकपालों की दिक्पालों की जो कीर्ति है यश है उसको ये समाप्त करने वाला है, निरपत्र पर है, मानी लज्जा रहित है। सदभीर आचार्यता पंता एन स्तब्धे न दूषिता, बोलते हैं सदाचार का जो मार्ग है ये किसके द्वारा आचरण किया जाता है, सदाचार व्यक्तियों के द्वारा। आचारो परम धर्म, आचारहीनम न पुनंति वेद। तो इसलिए यहां ये बोल रहे हैं कि सदाचारी लोगों के द्वारा जिस मार्ग का अवलंबन किया जाता है उस मार्ग को स्तब्धेन दूषिता, अर्थात ये जो है घमंडी ने, स्तब्ध का अर्थ है शब्द बैठा है घमंडी के द्वारा बैठा, बोले इस घमंडी के द्वारा नष्ट किया गया। ये समय शिष्यता प्राप्तो यन में दुहितो अग्रहित पाणिम विप्राग्नि मुकतः सावित्र्या इव साधु व्रतः। ये समय शिष्यता प्राप्तो, अर्थात जो दामाद होते हैं पुत्र और शिष्य दामाद ये सब एक बराबर के होते हैं, चाहे पुत्र मान लीजिएगा या दामाद मान लीजिएगा या शिष्य मान लीजिएगा। इसलिए यहां अपना दक्ष प्रजापति सभी को सुना रहा है, देखो ये मेरे पुत्र के समान हैं। क्यों ये न मैं दुहितु अग्रहित, क्योंकि इसने मेरी पुत्री का पाणिग्रहण किया। पाणि किसके सामने, विप्र अग्नि मुकता ब्राह्मण देवताओं के सामने अग्नि की प्रदक्षिणा की गई है। और पुत्री कैसे हैं, बोलते हैं सावित्र्या इव साधुवत, मानी ये सावित्री के समान हैं। इस प्रकार सुंदर अपने बेटी के लिए बोल देते हैं। और शिवजी के लिए क्या बोलेंगे, गृहीत्वा मृगशावाक्ष पाणिम मृकट लोचना प्रत्युत्थानम अभिवादारहे वाचाम अपि अकृत नोचितम। बोलते हैं मेरी पुत्री कैसे है, मृगशावाक्षी मृग नहीं मृग शाव अक्ष ऐसे। और उसका इन्होंने पाणी ग्रहण किया, लेकिन शिवजी कैसे हैं, मरकट लोचना बंदर के लोग, अपनी पुत्री तो बोल दे मृग नहीं और इनको क्या बोल दिए, मरकट लोचन बोल दे। प्रत्युत्थान अभिवाद आ रहे वाचाम अपि अकृत ना उचितम, बोले वाणी के द्वारा भी इसने मेरा क्या नहीं किया, सत्कार नहीं किया। लुप्त क्रिया या सुचये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्नपि अदाम बालाम शूद्राय इव ऊषतिम गिरह। और भी लांछन लगाने, लुप्त क्रिया सुचये, अभी इनके लिए साफ सफाई करने क्या जरूरत है, लेकिन ये अपना दूषण दे रहे हैं, मान ये सब के सब जितने भी अपने इनके सत्कर्म आदि है ये सब क्या हो गए, लुप्त क्रिया या अशुचि अपवित्र है, सत्क्रियाओं का लोप हुआ है। और मानिने भिन्न सेतवे मर्यादा का ये पूरा का पूरा उल्लंघन किया हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को अनिच्छन्नपि, मैं मेरी बाला को देना नहीं चाहता था, इसलिए अनिच्छन्नपि मैंने सती मैया को मैं इस शिवजी को देने वाला नहीं था। बोले अनिच्छन्नपि अदाम बालाम कैसे दिया, बोलते हैं इसको देकर फायदा नहीं हुआ। शूद्रा ऊषतिम गिरा, अर्थात शूद्र व्यक्ति को वेद पढ़ाना, शूद्र का अर्थ है जो अनाधिकारी व्यक्ति को विद्या दिया जाए। अभी बंदर के हाथ में अपना क्या दी, तलवार दे दी, तो तलवार दे दी रक्षा करने के लिए, नाक पर क्या बैठा बैठी मक्की बैठी, तो रक्षा किसकी किया नहीं। तो इसको बोलते हैं कि अनाधिकारी व्यक्ति को, चाहे विद्या बोलिए धन बोलिए, जो भी उसके हाथ में अनाधिकारी व्यक्ति के पास आ जाता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर अनाधिकारी व्यक्ति को जैसा वेद पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार मेरा ये दामाद होने योग्य नहीं था और ऐसे को मुझे देना पड़ा। बोलते क्यों अयोग्य है, प्रेतावासेश घोरेशु प्रेतर भूत गणैर्वृत अटती उन्मत्तवन नग्नो युक्त केशो हसन रुदन। बोलते हैं प्रेतावासेशु, कहां रहता है निवास, कहां है जहां प्रेत लोगों का निवास है वहां रहते हैं। और वो भी कौन सा घोर प्रेत, और प्रेतर भूत गणर और तब जब भूतों के पास रहते हैं तो किससे घिरेंगे, जहां रहते हैं उन्हीं से घिरेंगे ना, दूसरी मंडली थोड़ी आएगी, जब उनकी मंडली वही है और कोई दूसरी मंडली नहीं, हम ही लोग है, सभी को कहां जाना पड़ता है, धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहदार जन देयस बास, वही जाना है ना, फिर चिता के पास कौन रहते हैं, चिता की भस्म कौन लगाते हैं, चिता भस्म शिव जी, फिर हमारा वही तो उपयोग घर वाले रखते हैं क्या हमें, हमारी चिता की राख कौन लगाते, शंकर भगवान कितनी महान है, ये संसार की राख पूरे के पूरे लोग मर जाते हैं और उनकी चिता की राख लगाते, यही तो चिता भस्म है, दूसरे को ये चिता क्या है, संसार जला के भस्म है उनके पास, इसलिए संसार उनके पास प्रवेश कर नहीं पा सकता है। लेकिन तो यह अज्ञान, ये दोनों अर्थ है इसमें, बड़ी बड़ी टीकाएं पढ़ने पर दोनों अर्थ, मैं तो एक सामान्य मेरी वाणी को थोड़ा सा पवित्र करने लो क्या लूं, तो आप लोगों के सामने इच्छा हो गई, मैं भी आगे 5 दिन बोलने वाला हूं, अपना चिमन भाई जी ने फोन किया था, मैंने बोला योग आया है तो क्या बोलूं, उस समय तो मुझे कुछ भी सोचा नहीं, आज अचानक सेवा मिली तो मन में ऐसी शंका हो गई कि क्या लेना चाहिए, तो कुछ ना कुछ भगवान की वाणी, क्या बोलते हैं, भगवान के गुणानुवाद करना चाहिए, ममा तो एताम वाणीम गुणकथन पुण्येन भवत, अपनी वाणी भगवान के गुणों का वर्णन करने से पवित्र हो जाते हैं। बोलते हैं उठ अटति उन्मत्तवत, देखिए क्या क्या विषय घूमता रहता है और कैसे नाचता रहता है, नग्न है और युक्त केशा फैली हुई केशा है, हसन रुदन हस्ता होता है, रोता रहता है, अपने शिवजी के अनेक विशेषण देते हैं, चिता भस्म कृत स्नान प्रेत स्रंग नृहस्तिभूषण शिवापदेशे ही अशिव मत्त मत्त जनप्रिय पति प्रमत भूतनातान तमो मात्र आत्मकान तस्मै उन्मादनाताय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ताबत मया साध्वीं चोदिते परमेष्टिनः परमेष्टिना चोदिते, मानी परमेष्टि के द्वारा प्रेरणा देने करने पर दत्ता मया साध्वी, माने मेरी साध्वी बाला मैंने इनको दे दी, और कैसा कैसा ये हम, मैं तो श्लोक बोली दिया तुरंत अर्धव एक सेकंड में, ये सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों की पहनने योग्य नरमंडों को माला और शरीरों की बोले शरीरों में हड्डियों की गहने पहने, हड्डियों की गहने पूरे शरीर में कैसी गहने, हड्डियों की गहने, हम लोग सोने की घड़ी पहनते हैं और ये क्योंकि इनको कभी क्या बोलते हैं हड्डी कभी कमी नहीं होती है ना, आसानी से मिलती है वहां, इसलिए हो सकते हैं उनके घड़ी हो, ये बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में ये पूरा अशिव है, अमंगल रूप है, जैसे ये स्वयं मत वाला है वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं, भूत प्रेत प्रमत आदि निरेत तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ये नेता है, ये सरदार है, और अरे सभी ऋषियों को अपना देवता आदि सबों को संबोधन करते बोल रहा है, अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली बाली बेटी विवाह की। मेरी वाणी को यही विराम दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।